लीला चौहान पैलेस में नव्यांशी के लिए शगुन लेकर गई थी और जैसा कि उसको अंदाजा था उसे अंदर आने से नहीं रोका गया। वेद भी लीला के साथ पूरे तहजीब से पेश आया था। हालांकि वेद ने अरमान और नव्यांशी की जल्दबाजी में शादी करवाने से साफ इनकार कर दिया था, फिर भी लीला शादी ना सही सगाई का कहकर वहां से चली आई थी। चौहान पैलेस से लौटने के बाद लीला सीधा अपने कमरे में तेजिंदर से मिलने जा रही थी ताकि उसे ये खुशखबरी सुना सके। लीला जब कमरे में पहुंची तब तेजिंदर अपने काम में डूबे हुए थे। उसके कदमों की आहट सुनकर तेजिंदर ने चश्मा हटाकर उसकी तरफ देखा। लीला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुमने आखिर अपनी जिद पूरी कर ही ली, क्या जवाब दिया वेद ने, तेजिंदर ने शांत लहजे में पूछा। हालांकि लीला के बिना कुछ कहे ही उसकी मुस्कुराहट देखकर वो कुछ कुछ समझ गए थे कि वो अपने इरादों में कामयाब होकर आई है। कहना क्या था, अपनी बहन की खुशियों के आगे आखिर बोल भी क्या सकता था। उसे पहले से ही इस बारे में पता था और उसने इस बात का दिखावा तक नहीं किया कि वो इस बारे में नहीं जानता है। उसने रिश्ता स्वीकार कर लिया, लीला ने खुश होकर बताया। सिर्फ रिश्ता स्वीकार करने से नहीं होगा, इकलौती बहन है वो उसकी, और एक बार वो लड़की इस घर की बहू बन गई तो उसके आगे वेद मजबूर हो जाएगा। उसे चारा बनाकर हम उससे अंकुश का पता निकलवा सकते हैं, तेजिंदर ने जवाब दिया। अंकुश का जिक्र होते ही लीला के चेहरे के भाव गहले हो गए थे और उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई थी। मैंने उसके दिमाग में शादी का जिक्र छेड़ दिया है, शादी ना सही सगाई के लिए भी तैयार हो जाएगा तो शादी भी करवा लेंगे। आप देखिएगा, उसी की बहन को मोहरा बनाकर मैं कैसे वेद को कमजोर करती हूँ, और साथ ही अब शिवांशा की सच्चाई बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नव्यांशी काफी तेज तरार है और अगर उसे ये पता चला कि उसके भाई ने उसी के माता पिता के कातिल के परिवार को पनाह दे रखी है तो वो वेद का जीना हराम कर देगी। मैं वेद को इस हद तक मजबूर कर दूंगी कि या तो उसे शिवांशा को अपने हाथों से मारना पड़ेगा या खुद वो उसे बचाने के लिए इस घर को छोड़कर जाएगा, लीला ने सर्द आवाज में कहा और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। तेजिंदर ने लीला का हाथ सहलाया और कहा, बेशक ऐसा ही होगा। लीला ने हल्के से सिर हिला दिया था। वेद के घर शगुन लेकर जाने का प्लान लीला का नहीं बल्कि तेजिंदर का था। जैसे ही दिल्ली से लौटकर लीला ने नव्यांशी के वहां होने और उसके अरमान से रिश्ते के बारे में बताया तब तेजिंदर ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। अरमान आज तक इस परिवार के काम नहीं आया, वो इस तरह मौके पर हमारी मदद करेगा इस बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, तेजिंदर बोला। हाँ, लेकिन हमें अरमान को भी अपने काबू में रखना होगा, वो लड़का यहाँ रहने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। ऊपर से अगर उसे पता चला कि हम क्या प्लान कर रहे हैं तो वो नव्यांशी से ही शादी करने से इनकार कर देगा, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, लीला ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ तो तुम किस लिए हो, उसकी माँ को भी अच्छे से काबू में रखा था और अब बेटे की बारी है, ऊपर से मनन भी है, उसका सहारा लो। मुझे पता है वेद शादी ना सही पर सगाई करने से इनकार नहीं करेगा, हमें अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, किसी भी चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए, तेजिंदर ने लीला को समझाया। लीला भी उसकी बात पर सहमत थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे जबकि उनके दरवाजे पर खड़ा देवेश उनकी बातों को सुन रहा था। इस वक्त गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थीं। देवेश उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। उनकी पूरी बातें सुनने के बाद देवेश अपने कमरे में आया और उसने तुरंत अरमान को कॉल किया। अरमान के कॉल रिसीव करते ही देवेश गुस्से में उस पर फट पड़ा था। ये क्या किया तुमने, तुम्हें प्यार या शादी करनी है तो कोई और लड़की नहीं मिली थी, तुम अपनी बड़ी माँ और बड़े पापा को अच्छे से जानते हो, ऊपर से अंकुश भी गायब है और इन सब के पीछे वेद का हाथ है, क्यों खुद को उनका मोहरा बनाने पर मजबूर कर रहे हो अरमान, क्या मतलब है आपका, अरमान ने उलझन भरे स्वर में पूछा। अनजान बनने का दिखावा मत करो, तुम सब अच्छे से जानते हो कि अंकुश के साथ इन दिनों क्या हो रहा है और ये सब मनन और शिवांशा की शादी के दिन से ही शुरू हो गया था। पहले भी मैंने तुम्हें शिवांशा के मामले में टांग अड़ाने से मना किया था पर तुम नहीं माने, उतना सब कुछ काफी नहीं था जो अब दुश्मन खानदान की लड़की से प्यार करके रही सही कसर भी तुमने पूरी कर दी। तुम जानते भी हो यहाँ आने के बाद भाभी सीधा चौहान पैलेस में शगुन लेकर चली गई थी और अब वो यही चाहती हैं कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। अगर शादी करके नव्यांशी इस घर में आ गई तो न जाने भाभी उसके साथ क्या कुछ नहीं करेंगी, वो तो पहले से ही अंकुश की वजह से उस पूरे परिवार से गुस्सा है, देवेश ने अरमान को पूरी स्थिति बता दी थी। उनकी पूरी बात सुनकर अरमान के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। वो हल्के अंदाज में बोला, चलो आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट तो किया कि आपके भाई भाभी कैसे हैं और किस तरह अपने ही फैमिली मेंबर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरमान, टॉपिक चेंज मत करो, नव्यांशी से अपना रिश्ता तोड़ो, उसके अलावा किसी भी लड़की से शादी करने के लिए कहोगे तो मैं अगले दिन तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन उससे नहीं, देवेश ने सीधे सीधे कहा। और आपको किसने कहा कि मैंने आपकी परमिशन मांगी है, आप अपने भाई भाभी को तो अच्छे से जानते हो, लेकिन नव्यांशी सिंह चौहान को नहीं। जब आप लोग मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या आपको लगता है कि बड़ी माँ उसे चोट पहुंचा पाएंगी? वैसे बड़ी माँ को सच में उससे बचकर रहने की जरूरत है। उन्हीं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं और नव्यांशी शादी के बाद यहीं दिल्ली में रहेंगे। और दूसरी बात, अभी हम कोई शादी नहीं करने वाले हैं। अरमान ने भी अपना फैसला सुना दिया था। जब तक उन दोनों का रिश्ता सबके सामने नहीं आया था, तब तक अरमान और नव्यांशी के पास सोचने का समय था। लेकिन अचानक से जिस तरह अरमान को सबके सामने नव्यांशी के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ा था, उसके बाद से ही उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं रहा था। देवेश उसे आगे कुछ समझा पाते उससे पहले अरमान ने कॉल कट कर दिया। वो देवेश से बात करके दूसरी तरफ पलटा ही था कि उसके सामने नव्यांशी खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर भी हल्के परेशानी के भाव थे। अरमान ने गहरी सांस ली और नव्यांशी को अपने पास आने का इशारा किया। नव्यांशी उसके पास पहुंची तब अरमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। मैंने कहा था ना, आसान नहीं रहने वाला, अरमान ने धीमी आवाज में कहा। हाँ पता था, लेकिन मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेद भाई मेरे साथ हैं, नव्यांशी ने जवाब दिया। अच्छा और मेरा क्या, क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अरमान ने नाराजगी जताते हुए कहा। नव्यांशी ने सिर उठाकर अरमान के चेहरे की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तुम मेरे साथ नहीं भी होगे तो तुम्हें खींच कर अपनी साइड कर लूंगी। अजीब जबरदस्ती है, किसी गलत फहमी में मत रहना। जिस दिन तुम कुछ गलत करोगी उस दिन तुम खींच कर भी मुझे अपनी साइड लाने की कोशिश करोगी तब भी नहीं आऊंगा, अरमान ने सिर हिलाकर कहा। नव्यांशी ने उसे देखकर मुंह बनाया, जिस पर अरमान हल्का सा हंस दिया था। कुछ पल एक दूसरे के चेहरे की तरफ मुस्कुराकर देखने के बाद नव्यांशी ने गंभीर आवाज में कहा, वंश भाई का कॉल आया था और वो हम दोनों के रिश्ते से खुश नहीं है। तुम्हारी बड़ी माँ भी अजीब है, इस तरह अचानक रिश्ता लेकर कौन पहुंचता है? ऐसा लगता है जैसे हम दोनों अपने रिलेशन को ठीक से टाइम भी नहीं दे पाए। अभी तो ये शुरू हुआ था और ये लोग इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने में लग गए, अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा। उसे भी देवेश ने सब कुछ बता दिया था। भाई से बात करें, सिर्फ वही इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं और हमारी जल्दबाजी की शादी को रोक सकते हैं।
हाँ लेकिन अभी नहीं, टाइम देखो क्या हुआ है, अब तक वो सो गए होंगे और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतनी देर रात कॉल करना चाहिए, अरमान ने उसे समझाया। ठीक है फिर हम दोनों तो बात कर ही सकते हैं ना, इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारे भाई के सोने के बाद यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ, उनका बस चले तो वो मुझे तुम्हारे पास ही ना आने दे, नव्यांशी ने भौहें से कोड़कर कहा। अरमान ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया था। वो दोनों वहीं लगे सोफे पर बैठकर देर रात तक बातें करते रहे और फिर बाद में नव्यांशी वहीं अरमान के कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। अगली सुबह वेद की आंख खुली तो उसने देखा शिवांशा सोफे पर मुंह बनाकर बैठी हुई थी। वो आज उससे पहले उठ गई थी और वेद को जगाने के बजाय उसकी तरफ देख रही थी। वेद उठकर उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, आज कोई टाइम से उठ गया और क्या सोच रही हो? यही कि कब आप मुझे अपने पास आने दोगे, शिवांशा ने उसकी तरफ देखकर भौहें चढ़ाकर कहा। तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई, और प्लीज ऐसी बातें वंश के सामने मत बोल देना वरना वो फिर से मुझे टॉर्चर करने पर आ जाएगा कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देता, वेद ने आंखें घुमाकर कहा और शिवांशा को वहीं छोड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। मैं उन्हें सब बताने वाली हूँ, ये भी कि आप मेरे पास सोते तक नहीं हो, मुझे इस बेकार से काउच पर सोना पड़ता है, शिवांशा ने पीछे से तेज आवाज में कहा। वेद उसकी तरफ पलटा और पूरी गंभीरता से बोला, क्या ये सच में इतना बेकार है? शिवांशा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया था। वेद ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब में बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें इस पर सोने की जरूरत नहीं है, तुम आज से बेड पर सो जाना। क्या सच में? शिवांशा खुश होकर झट से बोली, हाँ सच में, पहले बता देती, डोंट वरी, अब तुम कंफर्टेबल होकर बेड पर सो सकती हो, मैं यहाँ सो जाऊंगा, वेद ने सपाट लहजे में कहा और दूसरी तरफ पलट गया था। शिवांशा को चिढ़ाने के बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे पता था कि उसका ये जवाब शिवांशा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और शिवांशा बुरी तरह चिढ़ जाएगी। उसने जैसा सोचा था वही हुआ। शिवांशा ने अपने पास रखा पिलो उठाया और वेद के पीछे फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? वेद उसे इग्नोर करके बाथरूम में चला गया था। अब तो शिवांशा उससे शादी की जिद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वेद ने बताया था कि उनकी शादी रजिस्टर होने की फॉर्मेलिटी पूरी होने और वहां जाकर आगे की प्रक्रिया करने में पूरे एक हफ्ते का टाइम लगेगा। पक्का शादी के बाद भी यही कहेंगे कि तुम पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो, थोड़ी बड़ी हो जाओ उसके बाद सोचेंगे। इसमें मेरी गलती है क्या कि मैं इनसे इतना बाद में पैदा हुई थी? शिवांशा गुस्से में खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। अगले कुछ देर में वेद तैयार होकर बाहर आ गया था। बाहर आते उसने कहा, अपना फॉर्म फिल कर लो, मैं घर नहीं आ पाऊंगा तो तुम्हें अकेले ही यूनिवर्सिटी जाकर उसे सबमिट करवाना होगा, उसके बाद कल हम शॉपिंग चलेंगे, तीन दिन में तुम्हारी क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। अच्छा तीन दिन बाद शुरू होंगी, और मुझे यहाँ हमेशा लगता है कि हर सुबह शाम मेरी क्लास लगती रहती है और वो आप लगाते हो, मुझे नॉर्मल लाइफ जीने क्यों नहीं देते हो? शिवांशा बच्चों की तरह शिकायत लगाकर बोली। वेद गौर से उसकी बात सुन रहा था। जब शिवांशा ने बोलना खत्म किया तब उसने शिवांशा को घूरते हुए पूछा, अच्छा और नॉर्मल लाइफ कैसी होती है? मेरे लिए मेरी नॉर्मल लाइफ वो होगी जब सुबह सुबह आप मुझे प्यार से जगाओगे, मैं आपकी बाहों में सिमट कर सोऊंगी और पूरे दिन घर पर रहकर शाम को आपके आने का इंतजार करूंगी, शिवांशा मुस्कुराते हुए अपने सपने के बारे में बता रही थी, जबकि वेद ये सब सुनकर खांसने लगा था। अपने सपने से बाहर आओ, तैयार होकर नीचे पहुंच जाना। अगर फॉर्म सबमिट करने यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची तो आई अश्योर यू कि तुम्हारे बाकी के सपने मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा, खासकर वो बाहों में सिमट कर सुबह जगाने वाला तो बिल्कुल नहीं, वेद ने सिर हिलाकर कहा और शिवांशा को बाथरूम में जाने का इशारा किया। वेद की बातों ने शिवांशा को तुरंत अपने सपनों से बाहर निकाल दिया था। वो मुंह बनाती हुई बाथरूम में गई और मन ही मन बोली, इतना कॉन्फिडेंस, अब तो सबसे पहले मैं यही सपना पूरा करके दिखाऊंगी कि आप मुझे प्यार से जगाओगे। आज की रात आपके पास ही सोऊंगी और मैं देखती हूँ आप क्या करते हो। देखते हैं शिवांशा अपना सपना पूरा कर पाती है या नहीं। अगर उसने सब कुछ वेद के भरोसे छोड़ दिया तो सच में इस जन्म में तो जल्दी से कुछ भी पूरा नहीं होने वाला। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। कई बार मुझे समझ नहीं आता कमी कहाँ रह जाती है जो आपने इस स्टोरी का रीच बिल्कुल गिरा दिया है। ना तो ठीक से कोई रीड कर रहा है और ना ही रिव्यू करके जाता है। प्लीज़ ऐसा मत करो यार, अगर आपका रिस्पॉन्स बेकार रहेगा तो मुझे जल्दी जल्दी कहानी वो ख़त्म करनी होगी।